एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जो 17वीं सदी के फ्रांस के बौद्धिक माहौल में एक बहुत ही केंद्रीय हस्ती थे।
हाँ।
नाम शायद रेने देकार्त या पास्कल जितना आम ना लगे, लेकिन असर शायद कहीं ज्यादा गहरा था। हम बात कर रहे हैं आंतवान आर्नोल्ड के।
आंतवान आर्नोल्ड, बिल्कुल। और उन्हें उनके जमाने में ले ग्रैंड आर्नोल्ड यानी महान आर्नोल्ड कहा जाता था।
महान आर्नोल्ड, ये तो बड़ा खिताब है।
हाँ, और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं था। आंतवान आर्नोल्ड मतलब 1612 से 1694 तक का उनका जीवन काल। वो एक असाधारण व्यक्ति थे, दार्शनिक, धर्मशास्त्री, तर्कशास्त्री, गणितज्ञ भी, और एक बहुत बहुत प्रभावशाली परिवार से आते थे।
अच्छा।
उनकी जिंदगी और उनका काम वो उस दौर के जो बौद्धिक और धार्मिक कह सकते हैं तूफान थे, उनके बिल्कुल बीचों बीच थे।
तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आर्नोल्ड इतने अहम क्यों थे और उनके विचार आज भी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं।
बिल्कुल, यही कोशिश रहेगी।
तो चलिए पहले जरा उस माहौल को समझें। 17वीं सदी का फ्रांस, इसे ग्रैंड सियाक्ल यानी महान शताब्दी भी कहते हैं।
हाँ, महान शताब्दी। ये लुई 14वें का दौर था, पूर्ण राजतंत्र, लेकिन साथ ही बौद्धिक और धार्मिक तौर पर बड़ी उथल पुथल मची हुई थी।
उथल पुथल किस तरह की?
देखिए, एक तरफ तो वैज्ञानिक क्रांति हो रही थी। देकार्त के विचारों ने, मतलब तर्कवाद, रैशनलिज्म ने पुरानी सोच को हिलाकर रख दिया था।
हाँ, देकार्त का तो बहुत असर था।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ धर्म के मैदान में जबरदस्त खींचतान थी। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच तो झगड़ा था ही।
वो तो था ही,
पर कैथोलिक चर्च के अंदर भी दो गुट बन गए थे, जेसुइट्स और जेनसिनिस्ट्स।
अच्छा,
ये हमने सामने थे।
अच्छा, ये जेनसिनिज्म, यहीं पर आर्नोल्ड का नाम आता है ना? ये था क्या आखिर, ये जेनसिनिज्म?
हाँ, जेनसिनिज्म। ये असल में कॉर्नेलियस जेनसिन नाम के एक बिशप थे, उनके विचारों पर आधारित एक कैथोलिक सुधार आंदोलन था।
सुधार आंदोलन?
हाँ, ये लोग चर्च की कुछ यूं कहें ढीली ढाली प्रथाओं के खिलाफ थे और सेंट ऑगस्टीन की शिक्षाओं पर बहुत जोर देते थे, खासकर ईश्वर की कृपा यानी डिवाइन ग्रेस की भूमिका पर और इंसान की अपनी कमजोरियों पर।
मतलब ज्यादा कठोरता पर जोर था।
हाँ, ज्यादा कठोर नैतिक जीवन और सच्ची पश्चाताप पर बल देते थे ये लोग। और आंतवान आर्नोल्ड वो इस आंदोलन के सबसे बड़े पैरोकार, सबसे बड़ी बौद्धिक शक्ति बन गए।
समझ गया। तो एक तरफ तर्क का जोर, दूसरी तरफ धर्म के अंदर ही गहरे मतभेद। ऐसे माहौल में आर्नोल्ड का सफर तो आसान नहीं रहा होगा।
बिल्कुल नहीं।
और उनका परिवार, सुना है पेरिस के जाने माने कानूनी और धार्मिक परिवार से थे, और 20 बच्चे थे उनके पिता के। ये उनमें सबसे छोटे थे।
हाँ, 20 बच्चों में सबसे छोटे। परिवार बहुत प्रतिष्ठित था, आर्नोल्ड वंश। शुरुआत में तो उनका इरादा वकालत करने का ही था।
अच्छा, वकील बनना चाहते थे।
हाँ, लेकिन फिर एक आध्यात्मिक गुरु थे, अब्बे डी सेंट साइरन, उनके प्रभाव में आकर वो धर्मशास्त्र की तरफ मुड़ गए। फिर पेरिस यूनिवर्सिटी के मशहूर सॉर्बोन में पढ़ाई की। अपनी तेज बुद्धि के लिए तो वो शुरू से ही जाने जाते थे, और 1641 में पादरी बन गए। पर उनकी असली पहचान बनी जेनसिनिज्म के पैरोकार के तौर पर,
और इसी वजह से मुश्किलें भी आई होंगी।
अरे, बहुत मुश्किलें। 1643 में उनकी एक किताब आई, ऑन फ्रीक्वेंट कम्युनियन, नाम था देला फ्रीक्वेंट कम्युनियन। इस किताब ने तो जैसे, मतलब उस वक्त के धार्मिक माहौल में भूचाल ला दिया।
ऐसा क्या था उसमें?
उसमें उन्होंने सीधे सीधे जेजुइट्स पर हमला बोला था। जेजुइट्स मानते थे कि भाई बार बार कम्युनियन लो, आसानी से पाप स्वीकार करो, इससे आध्यात्मिक जीवन सरल होता है।
हाँ, ये तो सुना है।
सच्ची पश्चाताप और नैतिक सुधार के बिना कम्युनियन का कोई अर्थ नहीं है। ये जेनसिनिज्म का एकदम मूल विचार था, और इसने जेसुइट्स को बहुत बहुत नाराज कर दिया।
तो फिर नतीजा जाहिर है, विरोध हुआ होगा।
हाँ, जबरदस्त विरोध। और नतीजा ये हुआ कि 1656 में उन्हें सोरबोन से निकाल दिया गया, अपने जेनसिनिस्ट विचारों का समर्थन करने के कारण।
निकाल दिया गया, ये तो बड़ा झटका होगा।
बहुत बड़ा झटका। इसके बाद वो पोर्ट रॉयल समुदाय से जुड़ गए। ये जेनसिनिज्म का केंद्र था, एक मठ। और कमाल की बात यह कि उनकी बहन एंजेलिक आर्नोल्ड वहां प्रमुख थी।
अच्छा, बहन भी वहीं थी।
हाँ, तो सालों तक वो वहीं रहे, अपना बौद्धिक काम करते रहे। लेकिन लुई 14वें के राज में जेनसिनिस्टों पर दबाव बढ़ता ही गया, इतना बढ़ा कि 1679 में उन्हें देश छोड़ना पड़ा।
देश छोड़ना पड़ा? कहाँ गए?
वो स्पेनिश नीदरलैंड्स चले गए, जो आज का बेल्जियम है, और वहीं ब्रुसेल्स में 1694 में उनकी मृत्यु हुई, निर्वासन में।
इतनी उथल पुथल भरी जिंदगी, निर्वासन भी झेला, इसके बावजूद उनका लेखन कार्य तो मतलब कमाल का है, इतनी सारी अहम किताबें लिखी।
हाँ वाकई।
चलिए उनके कुछ खास कामों और विचारों पर थोड़ी और बात करते हैं। आपने देकार्त का जिक्र किया था, उन्होंने देकार्त के मशहूर मेडिटेशंस पर भी कुछ लिखा था।
हाँ बिल्कुल, देकार्त के मेडिटेशंस के जवाब में उन्होंने चौथी आपत्तियां, फोर्थ ऑब्जेक्शंस लिखी 1641 में, और इसमें उन्होंने बहुत अदब से लेकिन बड़े तीखे सवाल उठाए थे।
कैसे सवाल?
खासकर उस तर्क पर जिसे बाद में कार्टेशियन सर्कल कहा गया, मतलब देकार्त का वो तरीका कि पहले अपने साफ और पक्के विचारों से ईश्वर का होना साबित करो।
हाँ।
और फिर ईश्वर के होने से अपने विचारों की सच्चाई की गारंटी लो। आर्नोल्ड ने पूछा, भाई ये एक तरह का गोलमोल तर्क नहीं है, मतलब आप वहीं पहुंचने जहां से शुरू किया था।
हाँ, ये तो सोचने वाली बात में, सर्कुलर रीजनिंग जिसे कहते हैं।
बिल्कुल, और उनकी इस आलोचना ने देकार्त को भी जवाब देने और सोचने पर मजबूर किया था।
ये कमाल है, मतलब वो सिर्फ अनुयायी नहीं थे, एक पैने आलोचक भी थे।
अच्छा, और उनकी वो किताब पोर्ट रॉयल लॉजिक, सुना है वो तो बहुत ही प्रभावशाली थी।
अरे वो तो अपने समय की यूं कहें बेस्ट सेलर बन गई थी। पोर्ट रॉयल लॉजिक, या उसका दूसरा नाम था तर्क या सोचने की कला, लॉजिक ऊ लार्ड पोंसे।
हाँ, 1662 में आई, पियरे निकोल के साथ लिखी थी उन्होंने।
सोचने की कला।
हाँ, और इसकी खासियत ये थी कि ये सिर्फ किताबी औपचारिक तर्क के नियमों की बात नहीं करती थी।
अच्छा, तो क्या था इसमें?
इसने लॉजिक को, मतलब तर्कशास्त्र को, रोजमर्रा की जिंदगी में उतार दिया कि सही ढंग से कैसे सोचें, गलतियों से कैसे बचें, अपनी बात साफ साफ कैसे रखें। ये सोचने की एक प्रैक्टिकल कला सिखाती थी, और इसने देकार्त के ज्ञान के सिद्धांतों को तर्क के व्यवहारिक इस्तेमाल से जोड़ा।
वाह।
और ये किताब इतनी चली कि करीब 200 साल तक यूरोप में तर्कशास्त्र की सबसे अहम टेक्स्ट बुक बनी रही।
200 साल। सोचने की कला, ये तो आज भी उतनी ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा।
बिल्कुल।
और उन्होंने भाषा पर भी ऐसा ही कुछ काम किया था, पोर्ट रॉयल ग्रामर।
हाँ, क्लाउड लैंसलॉट के साथ मिलकर लिखी थी पोर्ट रॉयल ग्रामर, ग्रामर जनरल एरेजो ने 1660 में। ये भी एक मिल का पत्थर थी।
बिल्कुल।
इसमें उन्होंने ये क्रांतिकारी विचार रखा कि दुनिया की सारी भाषाएं जो हैं, उनके व्याकरण के पीछे कुछ सार्वभौमिक, मतलब यूनिवर्सल सिद्धांत होते हैं।
सभी भाषाओं के पीछे?
हाँ, और ये सिद्धांत इंसानी सोच की बनावट से जुड़े हैं।
ये उस समय के लिए बहुत आगे की सोच थी।
इसलिए आज भी जो भाषा विज्ञानी हैं, खासकर नोआम चॉम्स्की, जिन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया।
हाँ, चॉम्स्की का नाम तो सुना है।
वो इस किताब को, मतलब पोर्ट रॉयल ग्रामर को, अपने सिद्धांत का एक अहम पुरखा मानते हैं।
यानी तर्क और भाषा दोनों के पीछे वो एक तरह के सार्वभौमिक नियम या ढांचे को देख रहे थे।
बिल्कुल, यही उनकी खोज थी।
अच्छा, उनका एक और बड़ा दार्शनिक टकराव भी तो हुआ था, निकोलस मैलेब्रांच के साथ।
हाँ, मैलेब्रांच के साथ। मैलेब्रांच भी उस दौर के एक बड़े दार्शनिक थे। उनका एक बहुत मशहूर विचार था कि हम दुनिया की चीजों को सीधे नहीं जानते, बल्कि हम उन्हें ईश्वर में देखते हैं।
ईश्वर में देखते हैं?
हाँ।
ये थोड़ा अजीब नहीं?
हाँ, मतलब उनका सिद्धांत थोड़ा जटिल और रहस्यमय था। आर्नोल्ड ने इस विचार का जोरदार खंडन किया अपनी किताब ऑन ट्रू एंड फॉल्स आइडियाज, दे व्रे ए दे फोस ई दे, 1683 में।
तो आर्नोल्ड का क्या कहना था, हम कैसे जानते हैं चीजों को?
आर्नोल्ड का कहना था कि नहीं भाई, हमारे विचार बाहरी चीजों की सिर्फ तस्वीरें या नुमाइंदगी नहीं है, हमारा मन बाहरी दुनिया को सीधे तौर पर जानता है।
डायरेक्टली?
जी, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष यथार्थवाद या डायरेक्ट रियलिज्म। हाँ, और ये जो बहस थी आर्नोल्ड और मैलेब्रांच के बीच कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं, विचारों की प्रकृति क्या है, ये ज्ञानमीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी का एक बहुत बड़ा सवाल बन गई, और इसने आगे चलकर जॉन लॉक और थॉमस रीड जैसे बड़े विचारकों को भी प्रभावित किया।
तो अगर हम उनके मुख्य योगदानों को देखें तो वो देकार्त के एक अहम आलोचक थे।
हाँ, आलोचक भी और समर्थक भी एक तरह से।
तर्क और भाषा पर बड़े नए विचार दिए, पोर्ट रॉयल लॉजिक और ग्रामर जैसी किताबें लिखीं, और ज्ञान कैसे मिलता है इस पर जो बहस थी उसे आगे बढ़ाया, डायरेक्ट रियलिज्म का बचाव किया।
बिल्कुल सही, यही उनके कुछ मुख्य बिंदु हैं।
अब अगर उनकी तुलना करें उनके दौर के दूसरे बड़े नामों से, जैसे ब्लेस पास्कल, वो भी तो जेंसेनिस्ट थे।
हाँ, पास्कल भी जेंसेनिस्ट थे, लेकिन उनका अंदाज बहुत अलग था। पास्कल ने जेंसेनिज्म में एक तरह की काव्यात्मक गहराई, एक मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि डाली, उनकी लेखनी में वो बात थी।
हाँ, उनकी पोंसे तो बहुत मशहूर है।
बिल्कुल, जबकि आर्नोल्ड ने जेंसेनिज्म को उसका तार्किक और धार्मिक आधार दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी बने। वो ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा तर्कपूर्ण थे इस मामले में,
और डेकार्त या लाइबनिस की तुलना में
देखा जाए तो डेकार्त या लाइबनिस जैसे दार्शनिकों ने बड़े बड़े फिलोसफिकल सिस्टम्स बनाए, पूरी व्यवस्था खड़ी की। आर्नोल्ड उस तरह के सिस्टम बिल्डर नहीं थे, लेकिन तर्क करने में, किसी तर्क की कमजोरी पकड़ने में वो शायद उनसे भी ज्यादा तेज थे। अच्छा। एक पैने आलोचक थे।
और माले ब्रांच से उनका फर्क तो साफ है, वो ईश्वर में देखना बनाम सीधे जानना।
हाँ, बिल्कुल साफ। माले ब्रांच का दर्शन थोड़ा रहस्यमय, आदर्शवादी था, और उनका वो अवसरवाद ओकेजनलिज्म का सिद्धांत भी था।
ओकेजनलिज्म वो क्या था?
मतलब ये मानना कि दुनिया में जो भी कार्य कारण दिखता है उसका असली कर्ता सिर्फ ईश्वर है। जैसे आग जलाने का कारण नहीं है, ईश्वर ही हर बार जलाने का अवसर पैदा करता है।
अच्छा।
आर्नोल्ड इसके बिल्कुल उलट थे। उनका तर्कवाद ज्यादा जमीनी था। वो मानते थे कि नहीं, प्राकृतिक चीजों में और प्रक्रियाओं में भी कार्य कारण की वास्तविक शक्ति होती है।
और पास्कल से एक और फर्क आपने बताया, आस्था और तर्क पर।
हाँ, पास्कल का झुकाव थोड़ा आस्थावाद फाइडिज्म की तरफ ज्यादा था, मतलब आस्था को तर्क से ऊपर रखना, जबकि आर्नोल्ड का मानना था कि तर्क और आस्था ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उनमें सामंजस्य बिठाया जा सकता है।
ये जानना भी दिलचस्प है कि एक तरफ उन्हें महान आर्नोल्ड कहा जाता था, पर दूसरी तरफ उन पर विधर्मी होने के आरोप लगे, उन्हें देश छोड़ना पड़ा, तो उनकी विरासत क्या रही, क्या माना जाता है आज उन्हें?
उनकी विरासत, हाँ, थोड़ी मिलीजुली और जटिल है। एक तरफ तो उनकी जबरदस्त बौद्धिक धाक थी, महान आर्नोल्ड का खिताब उनके कद को दिखाता है।
हाँ।
लेकिन दूसरी तरफ ज़ेनिज्म का इतनी कट्टरता से बचाव करने की वजह से उन्हें चर्च और सत्ता दोनों का गुस्सा झेलना पड़ा, विधर्मी करार दिया गया, निर्वासन में मरना पड़ा, और सदियों तक उनके दार्शनिक काम पर यह ज़ेनिसिस्ट विवाद का साया पड़ा रहा। लोग उन्हें बस उसी नजरिए से देखते थे।
लेकिन अब
खासकर पिछले 50-60 सालों में दर्शन और भाषा विज्ञान के इतिहासकार उन्हें फिर से खोज रहे हैं। 17वीं सदी के विचारों को, खासकर मन, धारणा, तर्क, भाषा, इन सब पर हुई बहसों को समझने में उनकी केंद्रीय भूमिका को पहचाना जा रहा है।
और आज के समय में उनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है? क्यों बात करें हम आर्नोल्ड की आज?
मुझे लगता है कई मायनों में। देखिये, तर्क और आस्था के बीच का जो तनाव है, जो रिश्ता है, वो सवाल तो आज भी उतना ही बड़ा है।
हाँ, वो तो है।
स्पष्ट और तार्किक सोच की जरूरत तो हमेशा ही रहती है। उनकी पोर्ट रॉयल लॉजिक इसी सोचने की कला पर जोर देती है। और वो सवाल कि क्या इंसानी समझ और भाषा के पीछे कोई सार्वभौमिक ढांचा है, ये सवाल भी आज भाषा विज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान में जिंदा है। और शायद सबसे बड़ी बात, आर्नोल्ड हमें याद दिलाते हैं कि गहरी बौद्धिक पड़ताल और मजबूत नैतिक या धार्मिक विश्वासों के बीच संतुलन साधना मुमकिन है। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं होता, चुनौतियों से भरा होता है।
उनके कुछ कथन भी हैं जो उनके विचारों की अच्छी झलक देते हैं, जैसे वो पोर्ट रॉयल लॉजिक की शुरुआत में ही लिखते हैं।
हाँ, वो कहते हैं, तर्क चीजों के ज्ञान को प्राप्त करने में स्वयं और दूसरों दोनों के निर्देश के लिए तर्क को सही दिशा देने की कला है। देखिए कितना साफ है, तर्क सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ज्ञान पाने और दूसरों तक पहुंचाने का एक व्यावहारिक साधन है, एक कला है।
और विचारों की प्रकृति पर उनका वो कथन जो माले ब्रांच के खिलाफ था,
एक विचार क्या है, यह स्वयं वस्तु है, जहां तक ये मन में वस्तुनिष्ठ रूप से है। मतलब विचार कोई परछाई या तस्वीर नहीं है जो चीज और मन के बीच में हो, विचार तो चीज का सीधे मन में मौजूद होना है। ये उनके डायरेक्ट रियलिज्म का सार है।
एक और कथन है उनका जो मुझे बहुत पसंद आया, बौद्धिक ईमानदारी पर। मन का सबसे बड़ा विकार चीजों पर इसलिए विश्वास करना है क्योंकि कोई उन्हें सच मानना चाहता है, बजाय इसके कि उन पर इसलिए विश्वास किया जाए क्योंकि किसी ने देखा है कि वे वास्तव में सत्य हैं।
क्या बात है, ये उनकी रग रग में जो तार्किक कठोरता थी, जो सच्चाई के प्रति उनकी निष्ठा थी, उसको दिखाता है। वो चाहते थे कि हम इसलिए ना माने क्योंकि मानना अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए माने क्योंकि हमने उसे सत्य पाया है, प्रमाण देखा है।
लेकिन शायद इसी कठोरता, इसी अड़ेकता की वजह से उन्हें इतने विवादों का सामना भी करना पड़ा, जैसा हमने पहले बात की।
हाँ, बिल्कुल। जेंसेनिज्म का बचाव उनके जीवन का केंद्रीय संघर्ष बन गया। जसुएट्स, सॉर्बोन यूनिवर्सिटी, यहां तक कि कई पोप ने भी उनके विचारों की निंदा की। उन्हें कैल्विनिज्म के बहुत करीब माना गया, जो कैथोलिक चर्च के लिए एक तरह से विधर्म था।
और इसके राजनीतिक नतीजे भी हुए।
हाँ, गंभीर राजनीतिक नतीजे। पोर्ट रॉयल मठ को आखिर में नष्ट कर दिया गया। आर्नोल्ड को खुद निर्वासन में जीना पड़ा। और उनकी बहस करने की शैली भी मतलब थी तो शानदार, लेकिन बहुत तीखी थी, बेझिझक थी। इससे उनके दुश्मन और बढ़ते गए। लोग उन्हें अभिमानी, चर्च की अवज्ञा करने वाला मानते थे।
दार्शनिक स्तर पर भी क्या उनकी आलोचना हुई, उनके डायरेक्ट रियलिज्म की या तर्क के इस्तेमाल की?
हाँ हुई। कुछ आलोचकों ने कहा कि उनका जो प्रत्यक्ष यथार्थवाद है वो शायद थोड़ा ज्यादा सरल है, दुनिया की जटिलता को या हमारे जानने की प्रक्रिया की जटिलता को पूरी तरह नहीं पकड़ता। और बाद के दार्शनिकों ने, जैसे डेविड ह्यूम जैसे अनुभववादियों ने, इस बात पर सवाल उठाया कि क्या सिर्फ तर्क के बल पर आप ईश्वर या धार्मिक सत्यों को साबित कर सकते हैं, जैसा आर्नोल्ड और देकार्त जैसे तर्कवादी मानते थे। ह्यूम का कहना था कि यह तर्क की सीमा से बाहर की बात है।
ये भी एक अहम नुक्ता है। अच्छा, उनके बारे में कुछ और रोचक बातें भी हैं। एक फ्रांसीसी कवि थे निकोलस बोइलू, उन्होंने आर्नोल्ड के बारे में कुछ कहा था।
हाँ, बोइलू ने उनके बारे में लिखा था, अपने एकांत के गहरे कोने से एक विद्वान अपनी कलम से एक राजा को कंपा सकता था।
वाह, कलम में इतनी ताकत।
बिल्कुल, ये उनके लेखन के असर को दिखाता है। और उनका परिवार, सोचिए, 20 भाई बहनों में से एक। उनकी बहन एंजेलिक पॉट रॉयल की प्रमुख थी। कई और रिश्तेदार भी जेंसेनिस्ट आंदोलन में बहुत सक्रिय थे। ये तो जैसे एक तरह का पारिवारिक मिशन ही बन गया था उनके लिए।
और ये बात भी कमाल की है कि गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद निर्वासन में रहते हुए भी वो लगातार लिखते रहे। सुना है 100 से ज्यादा किताबें और लेख लिखे या सह लिखे उन्होंने।
अविश्वसनीय लगता है ना, 100 से ज्यादा वॉल्यूम। वो सचमुच एक आजीवन विद्वान थे, पूरी जिंदगी पढ़ने लिखने में लगा दी, कभी शादी नहीं की। और हाँ, उनका लाइबनेस के साथ जो पत्र व्यवहार चला वो सालों तक चला।
लाइबनेस के साथ?
हाँ, गॉटफ्राइड विलहेम लाइबनेस। वो खत किताबत दर्शन के इतिहास के सबसे महान बौद्धिक संवादों में गिनी जाती हैं। उसमें पहचान, जरूरत, नेसेसिटी, वास्तविकता, इन सब पर बहुत गहरी बातें हुई। उनकी गणित में भी रुचि थी, खासकर प्रायिकता सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और ज्यामित्री में।
अगर हम पूरी बात को समेटें तो आंत्वा आर्नोल्ड एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। धर्मशास्त्री, दार्शनिक, तर्कशास्त्री, भाषाविद, जो 17वीं सदी के फ्रांस के बौद्धिक जगत पर पूरी तरह छाए हुए थे।
हाँ, एक दिग्गज थे वो।
जैनसिनिज्म की रक्षा ने उनकी जिंदगी को एक दिशा दी, लेकिन तमाम विवादों और निर्वासन के बावजूद उनकी कलम कभी रुकी नहीं। और पोर्ट रॉयल लॉजिक और ग्रामर ने तो शिक्षा की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़े।
बिल्कुल। और अंत में शायद एक बात सोचने के लिए रह जाती है, आर्नोल्ड का जीवन और उनका काम वो एक तरह के बौद्धिक मॉडल को हमारे सामने रखते हैं। एक ऐसा मॉडल जहां तर्कसंगत जांच और गहरी आस्था, व्यवस्थित विश्लेषण और जीवंत अनुभव, सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज और विशेष परिस्थितियों की सच्चाई, इन सबके बीच एक रचनात्मक तनाव, एक कश्मकश बनी रहती है।
ये दिलचस्प है।
लगने वाली प्रतिबद्धताओं के बीच रास्ता बनाने से, उनमें संतुलन साधने की कोशिश से ही निकलती हैं। यह आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी अलग अलग बौद्धिक, नैतिक या यहां तक कि भावनात्मक प्रतिबद्धताओं के बीच कैसे तालमेल बिठा सकते हैं, कैसे संतुलन बना सकते हैं।
बहुत खूब, ये एक बेहतरीन विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।